अप्रैल 10, और लोग 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। मरकुस 6:40। मत्ती 14:19 में हम एक ईश्वरीय अनुशासन पाते हैं, और उसने लोगों को घास पर बैठ जाने की आज्ञा दी। एक बड़ी भीड़ को खाना परोसना आसान काम नहीं होता। वे सभी एक भीड़ के रूप में आकर कहने लगते हैं, पहले मुझे दो। ऐसे बड़े और भूखे जन समूह को नियंत्रण करना आसान नहीं है, इसलिए प्रभु ने उन्हें बैठ जाने के लिए कहा। हम अनुशासन के बिना परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। लोग ईश्वरीय अनुशासन पसंद नहीं करते, वे परमेश्वर के वचन के खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना परमेश्वर के सेवकों की जिम्मेदारी है कि वे जहाँ भी परमेश्वर की सेवा करें वहाँ ईश्वरीय अनुशासन बना रहे। अगर हम ये चाहते हैं कि भूखे लोगों को खाना मिले और वे हमारी सेवकाई द्वारा तृप्त हों, तो हमें ईश्वरीय अनुशासन में रहना होगा। हम ईश्वरीय अनुशासन के खिलाफ विद्रोह न करें। परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, और हमें ईश्वरीय अनुशासन में रहते हुए काम करना सीखना होगा, और ये सुनिश्चित करना होगा कि ईश्वरीय अनुशासन बना रह सके। परमेश्वर के घर में अनुशासन बनाए रखने के इस सहज भेद को हमें सीखना चाहिए। हमें परमेश्वर के घर के प्रति आदर और श्रद्धा दिखानी चाहिए। अगर हमने ये सीख लिया है कि हमें परमेश्वर के घर में कैसे आना है, कैसे अपने घुटने टिकाकर अपनी श्रद्धा दर्शानी है, तो हम ईश्वरीय अनुशासन सीख सकते हैं। अक्सर रविवार की एक सामान्य सभा में भी अगुओं के लिए युवाओं को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। वे जो ईश्वरीय अनुशासन के अनुसार नहीं चलते, फिर हर एक जगह में मनुष्य का अनुशासन ले आना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के घर में ईश्वरीय अनुशासन के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर का अनुशासन लागू करना सीखना चाहिए, और जब ईश्वरीय अनुशासन लागू हो जाता है तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है वे उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते। जब प्रभु का अनुशासन बना रहता है, सिर्फ तभी वह एक सेवकाई को आशीषित देता है। मत्ती 14:21 में ऐसा लगता है जैसे पुरुष एक तरफ बैठे थे और स्त्रियां और बच्चे दूसरी तरफ बैठे थे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। पारिवारिक जीवनों, कलीसियाई जीवनों और रविवारीय सभाओं के लिए परमेश्वर के पास एक अनुशासन है। जब ईश्वरीय अनुशासन कायम रखा जाता है, तब परमेश्वर के पास आशीष देने का मौका होता है। हमारे प्रभु ने स्वर्ग की ओर देखा और रोटी को आशीष देकर उसे तोड़ा। जब तक बातों को परमेश्वर आशीष न दे, वे तृप्त नहीं कर सकती। परमेश्वर तभी आशीष देता है जब आप उस आशीष को अधिकार पूर्वक अपने लिए ले लेते हैं। लगभग हर एक मसीह की यह आदत है कि वे खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हालांकि वे परमेश्वर की आशीष को अधिकार पूर्वक अपने लिए ले लेने का दावा करते हैं, लेकिन अक्सर उनका यह विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ने उस खाने को आशीष दी है, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें दाल से ज़्यादा मांस में ज़्यादा आनंद मिलता है। अगर आपका यह विश्वास है कि प्रभु ने आपके खाने को आशीष दी है, तो हर एक खाने में आपको एक जैसा आनंद मिलेगा। इसकी बजाय जब आपके स्वाद के अनुसार कुछ नहीं बना होता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपनी पत्नी को डांटते हैं। लोग बहुत गंभीरता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस खाने को आशीष दे, लेकिन उनका यह विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ऐसा करेगा। मेरे अपने अनुभव में से मेरा यह विश्वास है कि जब से मेरा उद्धार हुआ है, तब से मैं खाने के बारे में कभी चिंता नहीं करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस तरह का खाना दिया जाता है। मैं ना तो कभी कुड़कुड़ाता हूँ और ना ही शिकायत करता हूँ। मैं अपने हृदय से ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे लिए खाने को आशीष देता है, और वह मेरे लिए अच्छा बन जाता है, और वह खाना चाहे जैसा भी हो, मैं उसका आनंद उठा लेता हूँ। और ये वास्तव में एक सच्चाई है कि जब प्रभु से खाने को आशीष देने के लिए कहते हैं, तो वह निश्चय ही खाने को आशीष देता है।